नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। एक बहुत ही गहरी चर्चा हम लोगों की चल रही है लगातार कि यदि परमात्मा मिलन करना है तो हमें किस प्रकार से मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज हो रही है कि हम भगवान से मिल पाए, और उसके लिए एक तैयारी की जरूरत तो होगी ही। तो कल एक संग की बात हो रही थी कि जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है, और इसीलिए संग का भी बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। पहले के जमाने में आप जानते हैं कि राहगीर पैदल यात्रा किया करते थे। एक राहगीर यात्रा करते करते एक स्थान पे पहुंचा, थक गया था इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया, सुस्ताने लगा। जैसे ही थोड़ी देर हुई वैसे ही उसे एक भयंकर आवाज सुनाई दी कि पकड़ो मारो लूटो, पकड़ो मारो लूटो। अब उसे लगा कि ये आवाज कहां से आ रही है। उसने ऊपर देखा तो एक तोता बैठा हुआ था और वो ये कह रहा था कि पकड़ो मारो लूटो, और उसकी आवाज सुन के कुछ डाकू गुफा से बाहर निकल आए। जैसे इस राहगीर ने देखा उसने सोचा कि अब तो जान बचा के भागना पड़ेगा। वो वहां से भागा, भागते भागते वो एक आश्रम के पास पहुंच गया। वहां जाके वो बैठा, और जैसे ही वो वहां बैठा फिर से उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी कि आइए श्रीमान, आपका स्वागत है, आप आश्रम में विश्राम कीजिए, भोजन पान कीजिए। अब उसे लगा इतनी मधुर आवाज कहां से आ रही है। उसने फिर ऊपर की तरफ देखा तो एक तोता बैठा हुआ था जो ये मधुर शब्द बोल रहा था। राहगीर आश्रम में प्रवेश हुआ और उसने वहां के महाराज से पूछा कि महाराज, ये दोनों तोते एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भयंकर था जिसकी आवाज सुन के मुझे भागना पड़ा, और एक ऐसा तोता है जो आपके पास है, कितनी मधुर बात कर रहा है। महाराज ने कहा कि ये दोनों वास्तव में सगे भाई हैं। एक था जो डाकुओं के संग पला बढ़ा है, और ये जो आश्रम में है ये संतों के साथ पला बढ़ा है। ये संग का रंग है, क्योंकि वो लुटेरों के साथ है, डाकुओं के साथ है, इसलिए वो लूटने में मारने में विश्वास रखता है और यही बोलता है। और चूंकि हमारा तोता संतों के साथ रहा है इसीलिए मधुर वाणी बोलता है, सबका स्वागत करता है। तो मित्रों, संतों का प्रभाव, डाकुओं का प्रभाव जब पशु पक्षियों पर पड़ता है, मनुष्यों पर भी अवश्य पड़ेगा ही। इसीलिए हम अपने जीवन को यदि श्रेष्ठता की ओर ले चलना चाहते हैं, संग का भी हमें विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। और किन किन बातों का ख्याल रखें और कैसे संग को श्रेष्ठ बनाएं, इसी की चर्चा आज दाता जी के साथ करेंगे समाधान कार्यक्रम में। आइए उनका अभिनंदन करते हैं। दाता जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
थैंक यू।
संघ के लिए क्या कहेंगे दाता जी?
हाँ, आपने जो कहा ये बहुत ही उत्तम एक विचार है, और इसका प्रभाव होता ही है, क्योंकि जिन लोगों को भगवान से मिलना है, सर्वोच्च प्राप्ति, लोग इसमें विश्वास भी शायद ही करें कि भगवान से मिलना है, ये सब गप लगा रहे हैं। परंतु ये सत्य है कि जो हम सबका परम पिता है वो अपनी संतानों से मिलने आता है। न केवल उनसे मिलता है, न केवल उन्हें अपना रूप दिखाता है, बल्कि उन्हें अपनी संपूर्ण अनुभूति भी देता है, भासना जिसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो यहाँ आएगा परमात्म मिलन के अनुभव के लिए, एक चीज है कि वो देख ले कि बाबा आया, शिव बाबा आए
जी,
बिल्कुल बहुत अच्छा उसे लगे, वाह शिव बाबा आए, सब कुछ उसने अनुभव किया। दूसरा है कि वो जब उस सभा में बैठे तो वो उनकी उपस्थिति से भाव विभोर हो जाए, उसका चित्त शांति की गहराई में चला जाए, वो परमानंद की अनुभूति में स्थित हो जाए, या वो योग युक्त हो जाए और लंबे काल तक उसका अंतर चित्त शुद्ध होने लगे, जो भी उसमें गंदगी भरी हुई है वो निकलने लगे, उसको एहसास होने लगे तुम्हें अब क्या करना है, और उसे लगे उसका तीसरा नेत्र खुल गया है। तो हमारे पास जो हम देखते आ रहे हैं, इतने लंबे सालों से बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ को परमात्म मिलन बहुत सुख देता है, किसी को शांति देता है, किसी को भगवान के प्यार की अनुभूति होती है, किसी को शिव बाबा से अपनापन भासता है। तो कोई वहां बैठकर बस आनंदित होकर उठते हैं, और उठते क्या हैं, बस वहां उनका बैठना और उनके जीवन में महान परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रारंभ होना, उनके विचार बदल जाते हैं, संस्कार बदल जाते हैं, बस उनके दिल से आवाज निकलती है यही है यही है, जिसे ढूंढ रहे थे वो तो यही है, और अब उनके मन में विचार धारा होती है, चलूं मैं यहाँ से और सारे संसार को बता दूं, जिसे तुम पुकार रहे हो वो उधर है, चलो। डॉक्टर सचिन ज्ञान मार्ग पर नहीं आए थे, MBBS करने के बाद उनके मन में तीव्र उत्कंठा थी कि मैं सन्यासी बनूं, रामकृष्ण मिशन में चला जाऊं। लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसकी बहुत तेज उत्कंठा थी। एक बार वो घर छोड़ के चले भी गए, फादर उनको पुनः वापिस लाए, फिर जाने की तैयारी में थे। अब सबको उन्होंने कन्विंस कर दिया था मुझे सन्यासी बनना है। उनकी बहन जो हमारे यहाँ आती है, उसने कहा अच्छा भाई तुम सन्यासी बन जाना, मैं भी खुश हूँ कि तुम एक अच्छे पथ पर जा रहे हो, लेकिन एक बार जरा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में होके आ जाओ। और उसने उसे इस प्रोग्राम में भेज दिया, जिसको अभी कुछ ज्ञान नहीं था, और वो यहाँ आ गए और उनके जो वंडरफुल अनुभव थे वो सचमुच आत्मा को झकझोर देने वाले थे। वो सभा में बैठे थे, उन्होंने क्लासेज सुनी, वो मग्न हो गए और उन्हें विस्मृति हो गई वहाँ की कि कोई आसपास भी बैठा है क्या। और उन्हें दिखने लगा कि स्टेज पर शंकराचार्य आए और मुझे जैसे कह रहे हैं बेटा जिसे तू ढूंढ रहा है वो यही है, यही है। फिर अनेक महान पुरुष आए जिनमें इनकी भावना थी, रामकृष्ण परमहंस आए, यही है,
ये उन्हें साक्षात्कार,
ये उन्हें बिल्कुल दिख रहा है, वो खो गए कि वो देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आए, यही है। और फिर उसे जब बाबा के महावाक्य शुरू हुए, फिर बाबा दृष्टि देने के बाद शिव बाबा बोलते हैं, तो उनके जो महावाक्य शुरू हुए तो उन्हें महावाक्य नहीं सुन रहे, उन्हें गीता के श्लोक सुनाई दे रहे हैं वहाँ से। और वो भाव विभोर होकर उठे और बस सन्यासी बनना उनका छूट गया और वो सच्चे सन्यासी बन गए। आ गए हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में, बहुत फेमस डॉक्टर जिनकी उपस्थिति में कोई भी केस यहाँ से बाहर नहीं जाता है, बहुत सफल हमारे अच्छे मित्र। इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पर आते हैं उनको ये विभिन्न अनुभूतियाँ होती हैं। एक व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य की पालना कर ली, बहुत सुंदर, उनको यहाँ आने का अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन अब उन्होंने अपना स्पिरिचुअल लेवल कितना ऊंचा उठाया है इस पे निर्भर करेगा उसकी वो अनुभूतियाँ जो उसे वहाँ होनी है। किसी ने अभी ज्ञान योग किया ही नहीं है, किसी का मन अभी बहुत विचलित रहता है, चित्त शांति नहीं हुआ, कोई अभी बुरे संग में रहता है, तो उसको वहाँ एकाग्रता नहीं होगी, उसे अच्छा तो लगेगा लेकिन ये जो डिवाइन फीलिंग्स हैं ये उसे नहीं होगी।
ये सन्यासी बनने के लिए जा रहे थे, इनकी सिस्टर यहाँ आती थी, अब इन्होंने इन्हें कहा कि एक बार इस मिलन में आ जाए, तो इस केस में इन्होंने तो इन चीजों का पालन नहीं किया था जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, फिर भी यहाँ आने के बाद इतनी डिवाइन फीलिंग।
हाँ, इनको ये था इसमें कुछ रहस्य, जो कर्मों की गति के अनुसार इनका जीवन पवित्र था ब्रह्मचर्य, क्योंकि इनको सन्यासी बनने की इच्छा थी तो ब्रह्मचर्य का इन्होंने स्ट्रिक्टली पालन किया था। और खान पान भी इनके घर में बिल्कुल सात्विक थे, ये महाराष्ट्र के हैं और इनका घर बिल्कुल, क्योंकि वो बहन भी ज्ञान में है और माँ बाप भी कुछ अच्छे कार्य करता है, तो एकदम सात्विकता परिवार में थी, तो ये दोनों चीजें इनके पास थी। और संग भी इनका बुरा नहीं था, क्योंकि इन्हें सन्यासी बनना था तो ये अध्ययन में ही लगे हुए थे, MBBS करने के बाद शास्त्रों का अध्ययन, और जो रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं उनसे कांटेक्ट, उनसे वार्तालाप, बहुत ज्यादा डिस्कशन, इसमें इनका समय बीतता था, इसलिए इनका जो स्पिरिचुअल लेवल था वो बहुत सुंदर था। दूसरी बात, जब मनुष्य की भक्ति पूर्ण हो जाती है तब उसे परमात्म मिलन की शुरुआत होती है, तो बस इनके अनुभव से मुझे ऐसा ही लगा कि इनका वो गुड टाइम आ गया था, इनकी भक्ति का पाठ पूर्ण हो गया था और इनको परमात्म मिलन होने वाला था, इसलिए इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने इनको उस 25,000 की सभा में डिवाइन इनसाइट दे दी, दिव्य दृष्टि, और ये वहाँ अकेले हो गए और सबको देखने लगे। तो हम फिर से वहीं आ जाएं, बात संग की है। मैं आपको कह रहा था कि स्पिरिचुअल लेवल हमारा ऊपर उठना चाहिए, आध्यात्मिक स्तर यानी हमारी मनोस्थिति जितनी ऊंची होगी उतना ही हम उसके अच्छे अनुभव प्राप्त कर लेंगे। चलिए मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं, हमारे दर्शकों को अवश्य ये प्रिय लगेगी, शास्त्र लिखे ग्रंथ लिखे गए, हमेशा एक बात विचारणीय है कि जिन लोगों ने वो लिखे थे उनकी मनोस्थिति बहुत उच्च स्तर की थी, वो बहुत पवित्र थे, उनका चित्त एकाग्र था, वो परमात्मा की प्रेरणाओं को कैच करने में समर्थ हुए, लेकिन जो उन्हें पढ़ रहे हैं उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत छोटा है, हो सकता केवल वो विद्वान हो, वो पवित्र हो ही न, हो सकता वो व्यक्ति मांसाहारी भी हो, ये भी संभव है आजकल। वो पढ़ रहे हैं, वो उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि लिखने वालों का स्पिरिचुअल लेवल जिस ऊंची स्थिति का था, पढ़ने वाले और व्याख्या करने वालों का भी स्पिरिचुअल लेवल उतना ही होगा, तो ही वो उनके भाव को ठीक से समझकर व्याख्या कर पाएंगे। नहीं तो ये करेंगे शब्दार्थ, उनके भाव कुछ अलग थे, अब किसने कौन सी बात किस भाव से कही। लैंग्वेज भी अलग अलग है, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न लैंग्वेजेज में अलग अलग मीनिंग होते हैं। हम देखते हैं मराठी में अलग है, तो गुजराती में अलग है, हिंदी में अलग है। तीन भाषाओं को यदि हम ले लें जो हिंदी से बहुत मिली जुली है, चौथी भी मारवाड़ी, तो हमारा स्पिरिचुअल लेवल जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छी तरह से हम हमारे ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसका अर्थ समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, गीता में लोगों को लगता है विरोधाभास बहुत है, ये बात क्यों कह दी, वो बात क्यों कह दी। ठीक इसी तरह यहाँ भी जो प्रभु मिलन के लिए आते हैं, उन्होंने अपना स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिकता का स्तर, यानी सहज भाषा में कहें मन की स्थिति जितनी श्रेष्ठ बनाई होगी उतना ही सुंदर अनुभव होगा। तो संघ का इसमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
बिल्कुल बेटा जी, संघ पे तो हम आएंगे ही। आपने जो डॉक्टर सचिन की बात कही, वहाँ मुझे एक दो बातें मेरे ध्यान में आ रही है, मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। एक तो आपने कहा गुड टाइम आने के पश्चात व्यक्ति स्वतः पहुंच जाता है, क्या हमें इंतजार करना चाहिए अपने गुड टाइम का, एक और दूसरी बात, जैसे साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुए, क्या ऐसे ही साक्षात्कार अनेक लोगों को होते हैं जो यहाँ पे आते हैं? ये दोनों क्वेश्चन मेरे जेहन में उठ रहे हैं, शायद हमारे दर्शकों के।
नहीं, बिल्कुल ठीक है, इट्स नेचुरल। तो देखिए गुड टाइम का, क्योंकि मनुष्य को पता नहीं कि ये है या दो मिनट के बाद है या पांच दिन के बाद है, इसलिए मनुष्य को अपने गुड टाइम का इंतजार न करके प्रयासरत रहना चाहिए। और फिर बहुत सारी चीजें जिसको लोग सिंपल भाषा में कहते हैं, ऊपर वाले के हाथ में भी तो है सब कुछ, नीचे वालों के हाथ में ही होता तो खेल ही अलग होता। दूसरी बात ये, जैसे इनको अनुभव हुए, ठीक ऐसे ही भी बहुतों को हुए हैं, लेकिन अलग अलग तरह के अनुभव हजारों लोगों को यहाँ आने पर होते हैं। अगर हमारी सभा में 25,000 लोग बैठे हैं तो मैं कहूंगा 1,000 को तो होंगे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस, 5,000 को होंगे अच्छे अनुभव, अगले 5,000 को होंगे थोड़े मीडियम क्वालिटी के, और अगले 5,000 को होंगे हल्के अनुभव, बाकी 5-7,000 को लगेगा बहुत अच्छा है, वाह कितनी शांति है यहाँ। तो इस तरह का ग्राफ चलेगा हमेशा।
तो ये क्यों है ग्राफ,
ये उनके वही जो चार उदाहरणाएं हैं
उसके कारण,
पवित्रता
जी,
शुद्ध अन्न, सत्संग और ये देवी गुणों की धारणा। इनमें से सत्संग कई लोग रोज नहीं अटेंड कर पाते, किसी का बिजनेस चल रहा है, सवेरे उठेंगे ही 7 बजे तो भागदौड़ का जीवन हो जाता है। कुछ लोग जो उनके पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ को छोड़ नहीं पाते, अब वो सब शराबी हैं, ये उनका साथ छोड़ नहीं पा रहे, संघर्ष हो रहा है, शराब का साथ तो छोड़ दिया लेकिन साथियों का साथ नहीं छूट रहा है। ये सब जो धारणाएं हैं इनके कारण ये अलग अलग अनुभूतियां होती। इसके अलावा एक और सूक्ष्म रहस्य है इसके पीछे, जिस व्यक्ति ने पिछले हजारों साल में जिस लेवल की भक्ति की है, देखिए एक है भक्ति करना, हाँ भाई सब जा रहे हैं तुम भी चलो, माताजी जा रहे बच्चों को भी ले जा रहे हैं, बेटा तुम भी हाथ जोड़ लो पैर छो लो। दूसरा है कामना युक्त भक्ति, ये कुछ मांग रहे हैं चलो भाई भगवान से ये मिलता है तुम भी चलो। तीसरी है निष्काम भाव की भक्ति, प्रेम भाव से भरी हुई भक्ति, बिल्कुल जिसकी भक्ति हो रही है उसमें चित्त रमा हुआ है, कामना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं उसे हमारा बहुत प्यार है, वो इष्ट है, इसमें अधिक जिससे हम प्यार करते हैं, प्यार से की गई निष्काम भाव की भक्ति। तो किसने हजारों साल में कैसी भक्ति की है, उसके संस्कार, उसकी फीलिंग्स उसके अंतर मन में समाई रहती है, वैसा ही प्यार वर्तमान समय में उसके अंदर जागृत होता है। तो वो शिव बाबा से प्यार करेगा, या बहुतों के ये क्वेश्चन रहते हैं प्यार कैसे करें, देखिए ये भी प्रश्न होता है ना, प्यार हो जाए ये पूछा नहीं जाता कैसे करें, हो जाता है प्रश्न ही होता कैसे छूटे। और यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान से प्यार कैसे करें, और कुछ लोग हैं उनके प्यार में मगन रहते हैं, पूछने की बात ही नहीं। तो जिनको जितना प्यार, जिनके अंदर जितनी शुद्धि, उस अनुसार अनुभव।
मतलब यहाँ पे भी कर्मों का सिद्धांत ही जुड़ गया कि आपने यदि बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत श्रेष्ठ भक्ति की है, तो उसी के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे अनुभव मिल रहे हैं या साक्षात्कार हो रहे हैं। तो भ्राता जी, फिर संघ की बात पे विशेष अब आ जाते हैं। जैसा आप कह रहे थे, तो संघ पे किस बात पे आप विशेष करके अटेंशन दिलवाएंगे हमारे दर्शकों का?
एक युवक है जी, स्टूडेंट, वो पढ़ रहा है, तब उसका एक फ्रेंड सर्किल है
जी।
अभी 5 साल से वो आपस में साथी हैं। अब उसमें से कई लोग हैं बड़ी बड़ी बात करने वाले, पिक्चर्स की चर्चाएं करने वाले, नेट पे क्या क्या गंदगी आ रही उसकी चर्चाएं करने वाले, बाह्य मुक्ता की बातें करने, अरे संसार ये खाओ पियो मौज करो इसके लिए है, ये मेहनत क्या, कौन देखो कौन मेहनत कर रहा है, मस्त रहो, ये जीवन मस्ती के लिए है, ये युवा काल आनंद के लिए, छोड़ो ये सब बातें। दूसरा दूसरी बात कर रहा, तीसरा तीसरी बात कर रहा। अब इन पर उसका प्रभाव रहता है, या यही उसमें शामिल थे बात करने में। तो उसको यदि वो नहीं छोड़ पाता तो अब भी उसको एकाग्रता होगी नहीं, जब भी वो मेडिटेशन में बैठेगा उसकी एकाग्रता नष्ट होगी, वही चीज उसके सामने घूमने लगेगी। संघ का ये बुरा असर होता है। अब एक व्यक्ति ऐसे बच्चों के संग रहता है, अब थोड़ा बड़े को देखो, थोड़ा युवक है, नौकरी करता है, 30-35 साल आयु है, उसका संग भी ऐसा है कि साथी लोग सारा दिन गंदी गंदी बातें करते हैं, उसके मन पर भी बहुत अच्छा असर नहीं रहता। वो चाहता भी है उन्हें छोड़ दूं, लेकिन वो ऐसे जंजाल में फंसा रहता है कि उन्हें छोड़ नहीं पाता
जी। हो सकता है बचपन के साथ,
हाँ, उनके चाहे तो छोड़ सकता है, वो अपने को अकेला फील करेगा, अरे अच्छे ज्ञान योग पे आए, मार्ग पे आए, ये तो सब साथी छूटने लगे, तो उनका संग उनको प्रभावित करता है। बहनों में भी ऐसा ही होता, कुछ कन्याएं हैं उनका संग बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल डिवाइन, बल्कि उनके संग का प्रभाव उन पर पड़ता है दूसरों पर। और कुछ ऐसे होते हैं दूसरों के संग के प्रभाव में स्वयं को रंगे रहते हैं, अच्छे संग का प्रभाव भी बहुत जल्दी पड़ सकता है, लेकिन मनुष्य अपनी अच्छाई के साथ शक्तियां नहीं रखता, इसलिए उसके वाइब्रेशन दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं। जैसे आज ही मेरे पास एक फोन कॉल आ रहा था कि मेरी ये समस्या है कि मैं दूसरों की हर चीज जल्दी ग्रहण कर लेती हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, पर मान लो मेडिटेशन में बैठे हैं और 10 लोग सामने बैठे हैं मेरे, तो उन 10 के जो विचार चल रहे वो मेरे अंदर आने लगते हैं। दूसरी भी ऐसी बात उसने कही कि उसे ऐसे ही बहुत ज्यादा भय लगने लगता है बिना कारण ही, ये भी सूक्ष्म रूप में संग के ही इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से यदि ज्ञान योग के मार्ग पर चल दिया कोई मनुष्य, उसे अपना दृढ़ लक्ष्य बनाना चाहिए कि जिस मार्ग पे एक बार चल दिए अब उसकी संपूर्णता तक हमें पहुंचना है
जी।
तो जब संपूर्णता तक पहुंचना है तो उन चीजों का, उन नियम और मर्यादाओं का स्ट्रिक्टली पालन कर लेना है जो उसमें बहुत आवश्यक हैं। अब बैठे हैं हम राजयोग मेडिटेशन के लिए 1 घंटे के लिए, और याद आ रही है वो दोस्तों की बातें, तो 1 घंटा भी हमारा वेस्ट हो जाएगा ना। हम परेशान होके उठेंगे कि अरे क्या मेडिटेशन तो और हमारे लिए टेंशन बन गई, न सुख मिल रहा न टाइम सफल हो रहा, इसे तो पढ़ लेते वही अच्छा होता। तो इसलिए अपने संग को पवित्र करना, बल्कि अपने को इतना अच्छा बना लेना कि हमारे संग से वो सब बदल जाए, वो गंदी बातें कर रहे थे उनमें परिवर्तन आ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
बिल्कुल, लेकिन आजकल यदि फ्रेंड सर्कल में देखा जाए ब्राता जी, तो ज्यादातर वही बातें होती हैं जो दुनियावी चीजें हैं। अब एकाएक उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता, और अभी इतनी स्पिरिचुअल पावर आई भी नहीं है कि हम उनको भी चेंज कर पाए, तो ये उहापोह वाली स्थिति तो बनी ही रहती है।
हाँ, फिर भी देखिए, जब मैंने कहा कि डॉक्टर भी यदि कह दें
जी
कि भाई तुम्हें ये चीज छोड़नी है, अब टेंशन के आजकल हाइपरटेंशन के पेशेंट बहुत हैं, और उन्हें भी डॉक्टर ऐसी बहुत सारी राय देते हैं कि भाई ऐसी बातें न करना, इनसे न मिलना, अब आपको ये करना है, तो मनुष्य अपने अच्छे हेल्थ के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, बचता है ना इन चीजों का। अब यहाँ है बहुत बड़ी चीज परमात्म मिलन, तो बहुत बड़ी चीज के लिए, जिसके लिए आज तक घर छोड़ते आए, जिसके लिए राजाएं अपने राजा ही छोड़कर जंगलों में चले गए, जिसके लिए सन्यासी और महात्माओं ने हम सब ने भी की है, कठिन साधनाएं की, तो उसके लिए एक बुरे संग को छोड़ देना जो सचमुच बुराई है, जो गंदगी है, जो हमारे मन को विचलित कर रही है, जो एकाग्रता को नष्ट कर रही है, न केवल राजयोग में एकाग्र बल्कि पढ़ाई में भी जो मनुष्य को, विद्यार्थियों को एकाग्र नहीं होने देती, ऐसे संघ का त्याग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है और इसी में मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा।
यदि हम अच्छे मित्र बनाना चाहते हैं भ्राता जी, तो किन बातों का फिर ध्यान रखें, क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी हैं और आवश्यकता तो होती ही है, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे तो संगी साथी तो बन ही जाते हैं, तो ऐसे में संगी साथी यदि हमें बनाने ही हैं तो किन बातों का विशेष आप कहेंगे?
कुछ लोग ऐसे अच्छे लीन हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि वो सोशलाइजेशन को भूल जाते हैं, भाई किसी को मित्र वित्र नहीं बनाना, ये सब बेकार हैं, उल्टी बातें करते हैं, हमें भी गिराना चाहते हैं, खुद तो गिरे हुए हैं। अब या तो उसमें स्पिरिचुअल पावर इतनी हो कि परमात्म साथ का उसे ऐसा अनुभव हो कि भगवान साथ है, कल्प वृक्ष का बीज साथ है, तो सारा संसार उसके साथ है। ये है स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत सुंदर स्थिति। अन्यथा उसे ये करना चाहिए कि अपने धारणाओं को वो इतना मजबूत करे कि जब वो उन लोगों के पास जाए तो इसका प्रभाव उन पर पड़े, उनका प्रभाव इस पर नहीं, यानी अच्छाइयां बुराइयों पर हावी हो जाए, विजयी हो जाए, तो वो सब इसके ऐसे साथी बन जाएंगे कि इसको उनका साथ इसके मार्ग में और तीव्र गति प्रदान करेगा।
बिल्कुल, मतलब मूल बात रही कि हमें अपनी स्थिति को ही बहुत आध्यात्मिक बनाना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा, ऊंचा बनाना होगा, अन्यथा लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वही हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और साथ ही जैसे आपने कहा कि हम एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं तो दूसरों का भी हमें सहयोग कई बार प्राप्त नहीं हो पाता। तो भ्राता जी, एक अच्छे संघ की जब हम बात करते हैं या सत्संग की, कल भी आप कह रहे थे, तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ संघ तो उस एक परमात्मा का ही है, उसे कैसे अपना हम साथी बना लें, दोस्त बना लें, क्योंकि उससे अच्छा दोस्त साथी तो शायद और कोई हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल, मेरे जीवन में यही सुंदर अनुभव रहा, मेरा भी, और मैंने फिर अपने साथी बनाए कि भगवान को अपना दोस्त बनाओ। मेरे साथ इसका संघ का बहुत सुंदर अनुभव है मेरे पूरे जीवन का। तो मैं किसी के पास नहीं जाता था दोस्ती करने के लिए, मेरे पास ही सब लोग आते थे मुझसे दोस्ती करने के लिए, वो पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट होने के कारण। लेकिन मैं देखता था कि जैसे ही वो मेरे पास आते हैं वो दुनियावी गंदी बातें नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सहयोग रहा। पीछे जब ज्ञान और योग मेरे पास बहुत अच्छा आ गया तो मुझे ये पता चला कि ये हमारे वाइब्रेशंस का इफेक्ट होता है। तो हमारे वाइब्रेशंस इतने अच्छे थे तो वो हमारे पास आते ही कहीं तो मुख से बोलते थे, अरे भाई अब ये गंदी बातें ना करो, ये बाहर करेंगे, यहाँ नहीं करो, चुप हो जाते थे। मुझे भी लगता था कि देखो कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे। और इसी से फिर बड़ी स्थिति कि भगवान को अपना दोस्त बना ले। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, मैं ऐसे लोगों से कट ऑफ रहने लगा जो ऐसी वैसी बातें करते हैं, जो योग से हमें विमुख करते हैं। तो मैंने देखा मैं अकेला, एक आधा साथी मेरा बनता,
और उन लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये तो बड़े अहंकारी
हैं, ऐसा भी जुलते ऐसा भी वो लोग कहते थे कि इसको बड़ा अहंकार है अपने अच्छे पुरुषार्थ का भी। देखा मिलता जुलता नहीं। फिर मैं थोड़ा मिलने जुलने भी लगा और मेरे पास वो लोग आने लगे जिनको अच्छे योगी बनना था। अभी एक नई शुरुआत हुई तो ऐसे बहुत सारे लोग पास आए तो उनके साथ से हमें बहुत अच्छा हुआ। तो फिर जो ये बात शुरू हुई कि भगवान को अपना दोस्त बनाओ, तो ऐसे सुंदर अनुभव हो गए कि मन की सारी बातें उनसे कर ली, तो दोस्तों की जो कमी थी वो खली नहीं कि सुप्रीम फ्रेंड हमें साथ दे रहा है, वो हमारी बात सुनता है और हमें ऐसा महसूस होने लगा कि वो सचमुच सुनता है। जैसे स्थूल में साकार रूप में कोई दोस्त हमारे पास रहता हो वो भी हमारे पास रहता है। तो इस तरह संघ का बहुत अच्छा अनुभव रहा और फिर तो ये सब कुछ ही बदल गया क्योंकि अच्छे लोग हमारे पास आने लगे। तो सार में मैं यही कहूंगा कि हम अपने को इतना ऊंचा उठा लें कि हमें बुरे लोगों के पास जाके उनको बदलने की जरूरत ना पड़े, बुरे लोग हमारे पास आकर ही बदल जाएं। और इससे हमारा फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़ भी जाएगा और हमारा फ्रेंड सर्किल अच्छी आत्माओं का, अच्छे मनुष्यों का हो जाएगा और ये बहुत सुंदर बात होगी।
बिल्कुल, और इसी संघ की शायद आवश्यकता होगी कि हम दूसरों को परिवर्तित करते चलें, जैसे आपने एक सुंदर अनुभव भी दिया है। लेकिन खुदा दोस्त का जो विशेष अनुभव है वो जरूर हम आपसे सुनना चाहेंगे कल, और इससे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि उसका साथ मिल जाए किसी को तो फिर जीवन में तो फिर बल्ले बल्ले वाली बात हो जाती है। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक पानी का बूंद यदि सागर में गिरता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। एक बूंद यदि सीप में गिरता है तो वो मोती बन जाता है। एक बूंद यदि सांप के मुख में गिरता है तो वो जहर बन जाता है। पानी का बूंद वही है, लेकिन अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोगों के संग में आने से उसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत होता है और कहीं बहुत अच्छा होता है। ये है संघ का असर। हमें भी अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है, अपने लक्ष्य को कैसा बनाना है, कहाँ तक हमें पहुँचना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संघ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जो बात विशेष चल रही है कि यदि हमें ईश्वर तक पहुँचना है, उनसे मिलन की अच्छी अनुभूति करनी है, तब तो हमें अपने संघ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को भी इतनी ऊंचाई तक ले चले हम, ताकि हमारे आसपास के लोग जो हमारे संगी साथी हैं उन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, उनके जीवन में भी परिवर्तन आता चले। तो अपने संघ को विशेष रूप से श्रेष्ठ बनाते चलेंगे और उस परम सत्य का भी संग करेंगे। कल भ्राता जी से जानेंगे कि वास्तव में खुदा दोस्त के साथ का अनुभव कैसा होता है। बने रहिएगा हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, अपनी समकरणी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान।
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान।